20वीं सदी में हिंदी दलित कविता। हिंदी में अभी तक आधुनिक दलित साहित्य का आरंभ 1914 में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत से माना जाता है, लेकिन दलित आकलन को गति देने वाले सामाजिक व्यक्तित्व स्वामी अछूतानंद हरिहर के काव्य के प्रकाश में आने के बाद यह तारीख 1914 से हटकर 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में ही चली जाती है। अतः अब दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत यदि महात्मा बुद्ध, गोरखनाथ, कबीर, रविदास, नामदेव, डॉक्टर अंबेडकर आदि हैं तो आधुनिक हिंदी दलित साहित्य के अग्रदूत स्वामी अछूतानंद स्वीकार किए जा सकते हैं। यद्यपि शोषक व वर्चस्ववादी मीडिया ने पूरी एक सदी तक स्वामी अछूतानंद के योगदान को अंधेरे में रखने में सफलता हासिल की। भारत में 19वीं सदी के मध्य से ही मुक्ति आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, जिसमें लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और वीरता में दलित वीरांगना के योगदान को रेखांकित किया। यहाँ भी वर्चस्ववादी इतिहास और मीडिया ने एक शताब्दी से अधिक समय तक झलकारी बाई की भूमिका को सामने नहीं आने दिया। 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के आरंभ तक भारत में सामाजिक जागृति के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी विकसित हो रही थी। 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह सदी दलितों की होगी। स्वामी विवेकानंद की यह भविष्यवाणी आंशिक रूप से सही सिद्ध हुई और 20वीं सदी दलित जागरण की सदी साबित हुई। यद्यपि पूरे तौर पर तो यह सदी दलितों की सिद्ध नहीं हुई। यह संभव है कि 21वीं सदी दलितों को की सिद्ध हो, और यह भी हो सकता है कि सदी के अंत तक दलित गैर दलित का भी भेद मिट जाए। 20वीं सदी में हर क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में दलित जागरण के स्वर सुनाई देते हैं। सामाजिक स्तर पर दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर, पश्चिम में ज्योतिबा फूले व डॉक्टर अम्बेडकर, राजनीति के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर अम्बेडकर दलित जागरण व दलित अस्मिता का प्रतीक बनकर उभरते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में दलितों का बौद्ध धर्मांतरण व साहित्य क्षेत्र में दलित साहित्य की सशक्त प्रवृत्ति का उदय ऐसे कदम हैं जिनसे 20वीं सदी का दलित जागरण बड़ी मंजिलें तय करता है। स्वातंत्रोत्तर भारत में दलित व पिछड़े नेतृत्व का राजनीतिक मानचित्र पर छा जाना भी दलित वर्ग द्वारा समाज में अपना उपेक्षित स्थान ग्रहण करने की दिशा में लिए गए कदम हैं। इसी संदर्भ में छठे सातवें दशक में दलित नेतृत्व में दलित पैंथर व दलित साहित्य जैसी क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का उदय होता है। इन प्रवृत्तियों का आरंभ महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश के स्तर पर इनका विस्तार हुआ और 20वीं सदी के अंत व 21वीं सदी के आरंभ पर भारत में दलित अब इस स्थिति तक पहुँच गए हैं जहाँ उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, न ही उन पर प्राचीन काल की तरह बर्बर अत्याचार किए जा सकते हैं। यद्यपि आर्थिक स्तर पर दलित दिशा में बहुत अधिक सुधार अभी नहीं हुआ है, इसका संबंध वर्ग शोषण पर आधारित व्यवस्था से है और दलितों की सामाजिक दशा भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन अंतिम तौर पर दलित मुक्ति वर्ग शोषक मुक्त दलित व्यवस्था के निर्माण से ही होगी। इसलिए दलित वर्ग को केवल आत्मसम्मान या सामाजिक रुतबे के लिए ही नहीं, शोषण पर आधारित अर्थतंत्र के खिलाफ भी अन्य मेहनतकशों से मिलकर संघर्ष करना होगा। 20वीं सदी के आरंभ से ही दलित जागरण की जो सुगबुगाहट शुरू हुई, उत्तर भारत में उसे सशक्त स्वर दिया स्वामी अछूतानंद हरिहर ने, जिनका जन्म 6 मई 1879 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के सुदूर गांव सोरिख में श्रमिक दलित परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम हीरालाल था और उन्होंने 14 वर्ष की उम्र से ही साधु संतों के साथ 10 वर्ष भ्रमण करते हुए ज्ञानोपार्जन किया। इस बीच उन्होंने संस्कृत, फारसी, मराठी, बंगला और पंजाबी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह जिला इटावा के दुर्गावती से हुआ व इस दंपत्ति की 3 पुत्रियां हुईं। स्वामी सच्चिदानंद ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर इनके नाम के साथ सन्यासी शब्द जोड़ दिया। 1905 में हीरालाल सन्यासी अजमेर में आर्य समाज में दीक्षित हुए व इनका नाम हरिहरानंद पड़ा। उज्जैन व आगरा में आपने प्रचार कार्य किया। आर्य समाज में भी जातिगत भेदभाव देखकर 1912 में उन्होंने आर्य समाज भी छोड़ दिया और दिल्ली आकर अखिल भारतीय अछूत महासभा की स्थापना की। 1912 से 1917 तक हरिहरानंद ने स्वामी अछूतानंद हरिहर बनकर आर्य समाज के विषय में अपना पक्ष रखा। 1921 में अछूतानंद हरिहर ने आर्य समाजी पंडित अखिलानंद से दिल्ली में शास्त्रार्थ किया। 1922 में उन्होंने विराट अछूत जाटव सम्मेलन का आयोजन किया और अपने समाज के लिए आदि हिंदू शब्द की घोषणा की। पंजाब में दलित खुद को आदि धर्मी कहते थे। 1925 में उन्होंने आदि हिंदू हिंदी मासिक पत्र कानपुर से प्रकाशित करना शुरू किया। अनेक प्रांतों में आदि हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। 1932 में अछूतानंद हरिहर ने आदि हिंदू सभा का नाम बदलकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कर दिया। इस बीच स्वामी अछूतानंद का स्वास्थ्य गिरने लगा और आर्थिक अभाव के कारण उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाया और 22 जुलाई 1933 को इनका देहावसान हो गया। स्वामी अछूतानंद ने कुल 54 वर्ष का जीवन जिया, लेकिन इस अल्पकालीन जीवन में दलित समाज की जागृति के लिए उन्होंने अथाह काम किया। दलित समाज की जागृति के लिए संगठन बनाने के साथ साथ उन्होंने अनेक प्रकार के साहित्य का भी रचना की, जिसका अधिकांश भाग अभी तक अप्रकाशित है। स्वामी अछूतानंद हरिहर की जो रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, उनमें शंभुक मुनि, रामराज्य न्याय, मायानंद बलिदान पर बलिदान नाटक शामिल है। उनकी प्रकाशित रचनाओं में हरिहर भजन माला, विज्ञान भजन माला व आदि हिंदू भजन माला भी है, लेकिन ये रचनाएं अब उपलब्ध नहीं है, केवल आदिवंश का डंका ही उपलब्ध है। पिछले दिनों उज्जैन के अस्मिता आदर्शी साहित्य सम्मेलन में इलाहाबाद से एडवोकेट गुरुप्रसाद मदन ने अपने पास अछूतानंद साहित्य की पांडुलिपि होने की बात कही थी, जिसे उन्होंने शीघ्र प्रकाशित कराने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक अछूतानंद हरिहर का यह साहित्य प्रकाशन की प्रतीक्षा में ही है। आदिवंश का डंका में गीत, गजल, भजन, रसिया आदि शामिल है। यह लोक छंद में रचित कृति है, जिसके 1983 तक 11 संस्करण छप चुके हैं। इस लघु संस्करण में 21 कविताएं संकलित हैं। स्वामी अछूतानंद हरिहर का साहित्य प्रकाश में आने से उनको हिंदी में आधुनिक दलित साहित्य का जनक माना जा सकता है। वह हीरा डोम की कविता उनकी परवर्ती कविता कही जा सकती है। अछूतानंद काव्य में शिल्पगत प्रवणता भी है। स्वामी अछूतानंद हरिहर ने अपनी साहित्य रचना का प्रयोग अपने सोए समाज को जगाने के लिए किया, इसलिए उनकी कविता राजनीतिक सामाजिक कविता है। दलित जागरण के लिए ये पंक्तियां हर सभा में पढ़ते थे। सब सब से हिंद के प्राचीन हकदार हम, था बनाया शुद्र हमको थे कभी सरदार हम, अब नहीं है वह जमाना जुल्म हरिहर मत सहो, तोड़ दो जंजीर जकड़े क्यों गुलामी में रहो। अछूतानंद की कविता में गेय तत्व प्रधान है। आदिवंश का डंका की पहली ही कविता गेय है। आदि हिंदू वंश का डंका बजाने चलो, कौम को नींद से जगाने चलो। अछूतानंद की कविता में प्रकृति चित्रण व महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव है। बुद्ध भूमि सोने की चिड़िया, जिसे देख मन ललचाता, आदिवंश की मैया माता, जानेगी तुझको शीश नवाता। सवर्णों को चेतावनी कविता में उच्चवर्गीय व वर्ण के पाखंड को तीव्रता से उघाड़ते हैं। रामकृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, किंतु कुकर्मों के करने में नेक न कभी लजाते हो। मनुस्मृति से जलना कविता में वे कहते हैं, निशदिन मनुस्मृति हमको जला रही है, ऊपर लौटने देती नीचे गिरा रही है। अछूतानंद अस्पृश्यता के खिलाफ साहित्य द्वारा आक्रोश पैदा करते हुए कहते हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध मानव हैं, पर तुम परख न पाते हो, घुसे छूत के कीड़े सिर में, इससे तुम चिल्लाते हो। स्वामी अछूतानंद की कविता पारंपरिक रूप में रची कविता है, जो स्वदेश रचना के रूप में रची गई है। दलित साहित्य का आरंभ स्वदेश रचनाशीलता से ही हो सकता था। दलित साहित्य अपनी पीड़ा व्यक्त करने व समाज में परिवर्तन की आकांक्षा से रचा जाने वाला साहित्य है, जिसे स्वामी अछूतानंद के रूप में सम्मानजनक पुरोधा मिले। हीरा डोम संबंधी अधिक जानकारी नहीं मिलती। वे वाराणसी के थे और सितंबर 1914 में उस समय की सर्वाधिक प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका सरस्वती में उनकी कविता अछूत की शिकायत छपी, जो भोजपुरी उपभाषा में रचित है। इस ज्ञात्मक कविता में करुणा की प्रधानता है और दलित हृदय की पीड़ा संवेदना में व्यक्त हुई है। दमनी के रात दिन दुखबा भागत बाली, दमनी के सहेजे से मिनती मिनती सुनाई की, दमनी के दुख भगवानो न देखता जे, दमनी के कबले कलेसवा उठाई की। भगवान भी दिन दुखी दलित का दुख नहीं देखता, हालांकि दमनी के रात ही दिन मेहनत करी ले जा, दुई गुरु पयुवा दरमहा में पाडवी। रात दिन दलित को खटना पड़ता है, तब भी मुश्किल से उसे महीने में 2-4 रुपए मिल पाते हैं। अछूतानंद हीरा डोम ने दलित वाणी को काव्यात्मक स्वर दिया, तो इसके बाद 20वीं सदी में लगातार दलित पीड़ा की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में हिंदी कविता में होती रही। यद्यपि उसे दलित साहित्य के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया, 1980 के बाद इस सदी के अंतिम दशक में हिंदी में दलित साहित्य की एक अवधारणा विकसित हुई, जिससे 20वीं सदी की हिंदी कविता को इस दृष्टि से आंकने का प्रयत्न किया गया। इस दिशा में माता प्रसाद ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा में अच्छी शुरुआत की। 1993 में प्रकाशित इस पुस्तक में हिंदी काव्य में समय समय पर अभिव्यक्त दलितों के जीवन पर फोकस कविता का विश्लेषण किया गया है। 20वीं सदी में जिन धाराओं से प्रभावित होकर दलित जीवन की प्रस्तुति हिंदी कविता में हुई, उनमें माता प्रसाद ने आर्य समाज काव्यधारा, गांधीवाद व राष्ट्रीय आंदोलन की काव्यधारा, प्रगतिशील साहित्य की काव्यधारा और डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित काव्यधारा में चित्रित दलित जीवन को अपने विश्लेषण व इन कविताओं के संकलन का आधार बनाया है। इन धाराओं के अतिरिक्त माता प्रसाद ने 20वीं सदी के स्फुट हिंदी कविता, महाकाव्यों, खंड काव्यों व लोकगीतों, आंचलिक गीतों आदि में दलित जीवन की प्रस्तुति का भी आकलन किया है। आर्य समाज से प्रभावित कवियों की दलित चित्रण में माता प्रसाद, नाथुराम शर्मा, शंकर, रूप नारायण पांडे, अनंत राय, मित्र अनंत, निरंकार देव सेवक, दीपचंद्र निर्मोही, सुमन आदि अनेक कवियों ने दलित चेतना के दृश्य प्रस्तुत किए हैं। जैसे रूप नारायण पांडे की कविता की ये पंक्तियाँ, साधना स्वराज की सफल कभी होगी नहीं अगर छूतों को न आप अपनावेंगे। हिंदी काव्य में भारती इंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम यह कहकर छुआछूत का विरोध किया, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छूत छात का कर्म। रामचंद्र शुक्ल के अछूत की आह, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण व सिया राम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, अध्याय सिंह उपाध्याय, हरियोद, गया प्रसाद शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, वियोगी हरि, आरसी प्रसाद सिंह, दुलारे लाल भार्गव, राम गोपाल शर्मा, दिनेश आदि तमाम कवियों ने अपनी कविता में गांधीवाद से प्रभावित अछूतोद्धार को विषय बनाया व दलितों के प्रति करुणा व्यक्त की। प्रगतिशील विचारधारा के प्रभाव में दलित जीवन की पीड़ा को वर्ग समाज द्वारा किए जा रहे शोषण के साथ में चित्रित किया गया व दलित वर्ग को शोषित वर्ग के रूप में देखा गया। इस चित्रण में आर्थिक शोषण पर ध्यान अधिक केंद्रित रहा व दलित के आत्मसम्मान की चोट को कम उभारा गया। इस धारा के कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रांगे राघव, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर मंडलोई, गोरख पांडे आदि सभी शामिल हैं। धूमिल की मोचीराम और नागार्जुन की हरिजन गाथा आदि कविताओं को तो दलित लेखकों ने अपनी परंपरा में शामिल किया है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्र भ्रमर, नरेश मेहता, जगदीश गुप्ता आदि कवियों ने भी दलित जीवन की पीड़ाओं को अपनी कविता में व्यक्त किया है। सोमदत्त, नंद चतुर्वेदी आदि कवियों की कविता में तो दलित उत्पीड़न के प्रति आक्रोश की भी अभिव्यक्ति हुई है। 20वीं सदी की हिंदी कविता में आंचलिक गीतों, लोकगीतों में भी दलित पीड़ा की अभिव्यक्ति सशक्त रूप में हुई है। प्रकाश लखनवी कृत शोषित पुकार, घिसुआ कविकृत मूर्ति में धूत, गोकरण लाल करुणाकर संदीवली कृत रचनाएं, माता प्रसाद मितई के गीत, सोनवा का पिजरा, राजवैद माता प्रसाद सागर कृत, अछूत वीरांगना आदि में गीत, गजल आदि के रूप में दलित जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। दलित साहित्य अपने सैद्धांतिक रूप में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से प्प्रभावित है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी में अनेक कवियों ने डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर दलित जीवन को अभिव्यक्ति दी, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित हिंदी दलित कविता। वास्तव में भारतीय भाषाओं के दलित साहित्य की पहचान उसके विचार बिंदुओं से की जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा भारतीय दलित साहित्य का मुख्य विचार बिंदु है। 1970 के बाद देश में विभिन्न दलित सांस्कृतिक संगठनों ने अम्बेडकरवाद को अपनाकर साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाया। हिंदी भाषा में 1930 के बाद ही यह संभव हो पाया। भारतीय दलित साहित्य अकादमी जैसे संगठनों ने भी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई। डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित हिंदी रचना दो प्रकार की है, प्रबंध काव्य, स्फुट काव्य। यह लगभग विचित्र है कि जब सामान्यतः प्रबंध काव्य का युग समाप्त हो रहा है, दलित काव्यधारा में इसका प्रस्फुटन हुआ है। हिंदी कवियों ने दलित नायकों को आधार बनाकर प्रबंध काव्यों का सृजन किया है, जिन प्रमुख दलित नायकों को प्रबंध काव्यों के केंद्र में रखा गया है उनमें प्राचीन काल के से एकलव्य, शबरी, शंबोक, महात्मा बुद्ध आदि शामिल हैं। वह आधुनिक काल के महानायक बनकर उभरे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शायद ऐसा कोई दलित रचनाकार जिसने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कोई काव्य रचना न की हो। एकलव्य को जिन प्रबंध कवियों ने अपनी रचना केंद्र में रखा है उनमें माता प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि, शंभू को केंद्र में रखकर रचना करने वाले कवियों में जगदीश गुप्त, बुद्ध संघ प्रेमी आदि, शबरी को नरेश मेहता, धनंजय व माया शर्मा आदि ने केंद्र में रखा है। भगवती चरण वर्मा ने महाभारत के कर्ण के चरित्र व विजय बहादुर चंद्र ने तथागत में बुद्ध के चरित्र को उघाड़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर आधारित रचनाएं रची गई हैं, प्रबंध काव्य रूप में भी व स्फुट कविता के रूप में भी। इनमें अनंगदास कृत भीमचरित मानस, लक्ष्मी नारायण सुधार कृत भीमसागर, बाबूलाल सुमन कृत अम्बेडकर महाकाव्य, जवाहरलाल कौल व्यग्र ने मसीहा दलितों का राजवैद्य माता प्रसाद व गोरखनाथ करुणाकर कृत आल्हा छंद में भीमचरित मानस, माता प्रसाद कृत भीमशतक भी शामिल है। डॉक्टर अम्बेडकर की रची स्फुट कविताओं बाबूलाल सुमन, रणजीत सिंह, मनोहर लाल प्रेमी, केदारनाथ प्रभात, सियाराम शरण आदित्य, उदय प्रकाश सिंह, पीडी टंडन, गुरुप्रसाद विद्यार्थी, रामेश्वर पवन, आनंद स्वरूप, बाबूराम सागर, ज्ञानेन्द्र प्रसाद आदि विद्रोही, दुर्गाचरण सरसंका, आर पी हंस, एम ए आजिज, आर पी कौशल, विनोद कुमार, ए आर अकेला, राजमणि ज्ञानी, श्यामलाल शर्मा, लाल चंद्राही आदि अनेक कवियों की कविताएँ चर्चित हुई हैं और वे रचनाएं मंचों से पढ़ी जाती हैं। दलित नायकों पर रची कविताओं के अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित और अनुप्राणित कवियों ने दलित जीवन की यंत्रणाओं, उनके संघर्षों और उनकी जीवनी स्थितियों पर भी अनेक कविताएं प्रकाशित की हैं। पिछले सालों में ऐसे अनेक काव्य संग्रह छपे हैं जिनमें ये कविताएं प्रकाशित हैं। इन संकलनों में सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका प्रकाश वाल्मीकि, दर्द के दस्तावेज डॉक्टर एन सिंह, सुनो ब्राह्मण मलखान सिंह, या तुम भी जानो सुशील टाक भौरे, व्यवस्था कविस्तर कुसुम वियोगी, आक्रोश सी वि भारती आदि शामिल हैं। इन कवियों के अतिरिक्त मोहनदास नमिश राय, कमल भारती, सोहन पाल सुमनाक्षर, प्रेम शंकर, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, स्नेही, जयप्रकाश कर्दम, श्याम सिंह शशि, गुरुप्रसाद, दयानंद बटोही, डॉक्टर सुखवीर सिंह, चंद्र कुमार वर्ठे आदि अन्य अनेक कवियों के या तो काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं या उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह की लंबी कविता बयान बाहर दलित यंत्रणा और संघर्ष दोनों का ही प्रभावी बयान है। चंद्र कुमार वर्ठे की क्रांति का प्रतीक कविता में तथाकथित प्राचीन संस्कृति के प्रति दलित आक्रोश व्यक्त हुआ है। मोहनदास नमिश राय क्रांति का हथौड़ा कविता में अनवरत संघर्ष और क्रांति कर्म का संदेश देते हैं। नयानंद बटोही की कविता द्रोणाचार्य सुने काफी लोकप्रिय हुई, इसमें एकलव्य अब पुरानी परंपराओं के प्रति विद्रोह का ऐलान करता है। एन सिंह की सतह से उठते हुए दलित अधिकार चेतना को व्यक्त करती है। रघुनाथ प्यासा ने लोक भाषा व गीतों में दलित वेदना व्यक्त की है। कुसुम वियोगी ने अपनी लघु काव्य व्यवस्था के विषय में दलित आक्रोश की अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रकार डॉक्टर सी वी भारती के संग्रह आक्रोश की 60 कविताओं में एवी रामास्वामी नायकर का स्मरण है और जातिविहीन समाज के निर्माण का संदेश भी। सुशीला टाक भौरे पिछले वर्षों में अत्यंत प्रबुद्ध दलित लेखिका के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने कविता, कहानी व विचार तीनों क्षेत्रों में गंभीर रचनाएं की हैं। यह तुम भी जानो काव्य संग्रह की कविताओं में सुशीला टाक भौरे ने बड़ी संवेदना से दलित स्त्री हृदय की संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी है। विद्रोहिणी कविता में सुशीला दलित आकांक्षाओं को असीम व्यक्त करते हुए कहती हैं, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए, मुझे अनंत आसमान चाहिए। पिछले दशक में हिंदी दलित काव्य में दो कवियों ने विशिष्ट पहचान स्थापित की है। ये दो कवि हैं मलखान सिंह और ओम प्रकाश वाल्मीकि। मलखान सिंह का 1996 में प्रथम बार प्रकाशित लघु काव्य संग्रह सुनो ब्राह्मण पाठकों और श्रोताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। मलखान सिंह का कविता पाठ बहुत प्रभावी है। सुनो ब्राह्मण में संकलित कुल 15 कविताएं कवि की आंतरिक पीड़ा, उसके प्रतिरोध और उसके विद्रोह को सशक्त वाणी देने वाली कविताएं हैं। कवि संघर्ष की कठिन यात्रा के बावजूद आशावादी है और कहता है, मैं निराश नहीं हूं मित्र, गांव की कीच भरी गलियों में मौसम के खिलाफ उठती हुई आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। सुनो ब्राह्मण कविता में कवि ब्राह्मणवादी वर्चस्व को एकदम रद्द कर ऐलान कर देता है। सुनो वशिष्ठ द्रोणाचार्य, तुम भी सुनो, हम तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारे अतीत तुम्हारी आस्थाओं पर थूकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन आत्मकथा के माध्यम से हिंदी में दलित आत्मकथा विधा को प्रतिष्ठा दिलाई और इसे मराठी दलित आत्मकथाओं के समकक्ष ला खड़ा किया है। तो एक कवि रूप में भी उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अभी तक उनके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका। सदियों का संताप का प्रथम संस्करण 1989 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन की 19 कविताओं में शंभूक का कटासिर, कवियों का संताप, तब तुम क्या करोगे आदि में वाल्मीकि ने दलित मन की सामाजिक अपमान व उपेक्षा की बड़ी पीड़ा को संवेदनशीलता से काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। 1997 में प्रकाशित बस बहुत हो चुका कि 50 कविताएं कवि वाल्मीकि के अगले प्रखर व परिपक्व विकास की गवाही देने वाली कविताएं हैं। इन कविताओं में वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। शायद आप जानते हो, कविता में कवि का सीधा प्रश्न है, चूहड़े या डोम की आत्मा ब्रह्मकांश क्यों नहीं है, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। आदिम रूप कविता में कवि शब्द की शक्ति पर अपना भरोसा व्यक्त करता हुआ कहता है, शब्द तुम्हें कसम है, एक न एक दिन तुम उतरोगे पृथ्वी पर धूप बनकर। बनारस में सांस्कृतिक पुलिसकर्मियों ने हिंदुत्ववाद की रक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर होते विधवाओं पर अत्याचार को उगाड़ने से रोकने के लिए हिंसा का तांडव नाच खेला। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने रुदे हुए शब्द कविता में ऐसी ही हिंसक परिस्थितियों को इन शब्दों में उघाड़ा है। आप हंसे पीठ पीछे या खड़ी कर दें, लोहे की दीवार रास्तों पर किसी का घर फूकें या फैलाएं दहशत, कर देना का बंदे पूछेंगे सवाल रुदे हुए शब्द, क्यों नहीं आई बाढ़ गंगा में, क्यों नहीं उठकर बैठ गया जला मुर्दा, काशी के मणिकर्णिका घाट पर क्यों नहीं उमड़ा चक्रवात, महासागर के विस्तृत लहरों पर जब पुष्प वर्षा के देवताओं ने तपस्वी की हत्या कर। बनारस में दीपा मेहता और शबाना आजमी और उनकी टीम के साथ जो सलूक संस्कृति रक्षा के नाम पर किया गया उसे वाल्मीकि की इसी कविता के ये शब्द साकार करते हैं। मुर्दा संस्कृति की लाश पर मडराती चील जश्न मनाएगी, इसके पंखों के साए में संस्कृति का तकिया बनाकर शिकारगाह में अदलेट आदमखोर निकाल रहा है दांत में फंसे मांस के रेशे नुकीले खंजर से। कभी सोचा है शीर्षक कविता में वाल्मीकि फिर संस्कृति के पुलिसकर्मियों की हकीकत इन शब्दों में उगाड़ते हैं। जब टूटता है रोज तो तुम्हारा सीना 36 हो जाता है, क्योंकि मार्क्सवादियों ने छीनाल बना दिया है तुम्हारी संस्कृति को। राष्ट्रपति नारायणन ने गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ पर संसद में देश को सावधान किया कि गरीब की सहनशीलता की परीक्षा मत लो, क्योंकि यदि उसकी सहनशीलता का बांध टूट गया तो वर्तमान व्यवस्था उसे झेल नहीं पाएगी। कवि वाल्मीकि ने इस बात को कविता में कहा, बस बहुत हो चुका चुप रहना निरर्थक पड़े पत्थर, अब काम आएंगे संतृप्त जनों के। वर्चस्ववादी संस्कृति पर वाल्मीकि ने अपनी हर कविता में प्रहार किया है। सत्य की परिभाषा कविता में वे पूछते हैं, कैद कर रखा है तुमने तहखानों में संस्कृति को, मैं पूछता हूँ संस्कृति क्या तुम्हारी रखेल है। संग्रह की अंतिम कविता में वाल्मीकि का अंतर्मन कबीर के रंग में रंग कर पूछता है, वह दिन कब आएगा जब बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगीन भी नहीं जनेगी भंगी। लेकिन वाल्मीकि के मन का संदेह सामाजिक वास्तविकताओं के सामने असह्य हो कह उठता है, क्या ऐसे दिन कभी आएंगे। पूरे दलित साहित्य का यही यक्ष प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा समाज निर्मित होगा जब मनुष्य आदमी और आदमी के बीच जाति का विभाजन नहीं होगा, जब इंसान को सिर्फ और सिर्फ इंसान के रूप में देखा जाएगा। जैसा कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मानस की जात सब एको पहचानबो, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि कबीर, नानक, रविदास, गुरु गोविंद सिंह, नामदेव व अन्य अनेक संतों ने जो कुछ सैकड़ों वर्ष पहले कहा, वह स्थिति सैकड़ों वर्ष बाद भी बदल नहीं पाई और इस स्थिति की अमानवीयता को उघाड़ने व इन्हीं संतों का संदेश वर्तमान में पुनः फोकस करने के लिए दलित साहित्य को एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप लेना पड़ा। यद्यपि समय पाकर संगठन व आंदोलन भी जब संस्थागत रूप लेते हैं तो अनेक कमजोरियों व अंतर्विरोधों का शिकार होकर अपने मूल उद्देश्य व मंजिल की दिशा में से भटक जाते हैं। फिर यह चाहे कबीर पंथ में हुआ हो या वर्तमान में प्रगतिशील आंदोलन में दलित साहित्य इस भटकन से कहाँ तक बच पाएगा और जातिविहीन समाज बनाने के लिए अपने सपने को किस हद तक पूरा कर पाएगा या आगे ले जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के दलित साहित्य और इसके एक रूप दलित कविता ने भारतीय समाज के एक जटिल व विशिष्ट यथार्थ जाति वर्ण भेद में बटे समाज की क्रूर वास्तविकता को प्रखर रूप से उघाड़ने का साहस किया है। इस अर्थ में 20वीं सदी के दलित कविता 21वीं सदी में और अधिक परिपक्व रूप ग्रहण कर सकती है। 21वीं सदी के दलित कविता व दलित साहित्य सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हिंसक फांसीवादी पुलिस के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध भी बनकर उभर सकती है। ये प्रतिरोध तब और भी शक्तिशाली बन सकता है यदि दलित व प्रगतिशील कविता एकदम हर अहम कदम होकर चले, क्योंकि दोनों की मंजिल भी एक है और रास्ता भी काफ़ी हद तक एक ही है।